أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين ووصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگرچہ آپ انشاءاللہ وقت کافی گزر چکا ہے اور یہاں تشریف فرما ہے میں جو ہی گفتگو ختم کروں گا میرے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین آغا حسن ظفر نقوی صاحب میرے بعد خطاب فرمائیں گے جو پڑھ لیں محمد و آل محمد پر آج 21 ذی الحج تھی درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر آج 21 ذی الحج تھی آج کی صبح انگام سحر شہید قائد کی شہادت ہوئی قمری حساب سے آج کی صبح جو گزری ہے شہید قائد کی شہادت کا دن تھا لہٰذا ہم نے اسی مناسبت سے 21 ذی الحج کی مناسبت سے شہید کی برسی کو رکھا اگرچہ اس سال عیسوی تاریخ 5 اگست تھی 1988 آج تقریباً 2008 سے 2021 تک ہماری اس نئی موومنٹ اور تحریک کا آغاز شہید کی شہادت کی برسی کے مناسبت سے ہوا تھا پاڑا چنار محاصرے میں تھا پاکستان میں قتل و غارت گری عام تھی ڈیرہ اسماعیل خان کربلا بنا ہوا تھا بلوچستان آئے دن ہمارے پیاروں کی مقتل بن کے چکا تھا سرزمین سندھ بالعموم اور کراچی بالخصوص جگہ جگہ ہمارے شہیدوں کے خون کے نشان موجود تھے غرض پاکستان میں قاتل دن دناتے پھرتے تھے اور کوئی انہیں منہ دینے والا نہیں تھا روکنے والا نہیں تھا حکومتی سرپرستی بھی انہیں حاصل تھی ان قاتلوں کو ان درندوں اور بھیڑیوں کو وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ اگر حکومتی سرپرستی نہ ہو تو اتنے بڑے لشکر ایک ملک میں نہیں بن سکتے اتنے قاتل شہروں میں نہیں گھس سکتے یہ سارا کچھ وطن کے بیٹوں کے خلاف تھا وطن کے باوفا فرزندوں کے خلاف تھا انہیں اس جرم کی سزا دی جا رہی تھی کہ تمہارے اسلاف نے پاکستان کیوں بنایا تھا تم حق اور سچ کا ساتھ کیوں دیتے ہو تم مظلوموں کے حامی کیوں ہو تم کربلائی کیوں ہو تم عاشورائی کیوں ہو تم یا حسین کیوں کہتے ہو تم یا علی کیوں کہتے ہو پاکستان کے حسینی ظالم بے رحم ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے انہوں نے اہل تشیع کو مارا اہل سنت کو مارا पाकिस्तान के फर्जंदों को मारा, कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने जहां पर उन्हें वार न किया हो। इन हालात में इस्लामाबाद में शहीद कायद की बरसी का इज्तिमा हुआ और यहीं से फिर से वो परचम उठा लिया गया जो दुश्मन ने शहीद के हाथों से गिराने की कोशिश की थी, और फिर से वही परचम उठाकर अपनी कौम मिल्लत और वतन से मजलूमों से अहदे वफा निभाने के लिए आप सब लब्बैक या हुसैन कहते हुए आपने पाकिस्तान की करबला में कदम रखा और दुश्मन को यह पैगाम दिया कि हम हमारे सर कट तो सकते हैं, हम असर की करबला से गायब नहीं होंगे। कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्दिन करबला, हमारे लिए वतन की धरती का चप्पा चप्पा करबला है और हर रोज आशूरा है, इसलिए यजीदियों के मुकाबले में हम मैदान में हाजिर रहेंगे, कभी गायब नजर नहीं आएंगे। इस जज्बे और वलवले के साथ आप उठे। दुश्मन क्या चाहता था? दुश्मन यह चाहता था कि आपको आपकी तकफीर करके आपको मुआश इस्लामी पैकर से काट के परे फेंक दे, आपको मारे डराए, आपको वजदा हो जाए, आपकी आजादारी लिमिटेड हो जाए और रुक जाए, आपके आपकी सोशलाइजेशन और इज्तमाही रवाबत खत्म हो जाए या कम हो जाए, आपकी सियासी ताकत टूट जाए, मजहबी ताकत टूट जाए, समाजी ताकत टूट जाए और आपकी हर किस्म की ताकत टूट जाए। दुश्मन यह चाहता था, लेकिन हमने शहीद कायद को अपना पेशरो मानते हुए उनके रास्ते पर चले। हमने तफरके का मुकाबला शिया सुन्नी यूनिटी के जरिए किया, जो इमाम उम्मत इमाम राहिल कुद्दस सिरो ने दिया था, जिसके परचमदार और अलंबरदार और मुबल्लिग पाकिस्तान की सरजमीन पर शहीद कायद थे। अहले सुन्नत भाइयों के साथ हम करीब हो गए, यूनिटी की फजा को कवी किया, एक दूसरे के करीब आ गए, इतने करीब कि भाइयों की तरह हैं, एक जान और दो पैकर की तरह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वादत का नतीजा आपने देखा, दुश्मन नाकाम हुआ, वो तन्हा हुआ। पिछले साल जब तकफीरियों के मंसूबे और साजिश की वजह से बहुत से लोग उनके फितने का शिकार हुए, बड़े बड़े इज्तिमात उन्होंने किए, उनके जहन में यह था कि अब पाकिस्तान के अंदर हम अहले तशय्यु और अहले सुन्नत के दरमियान एक वसी दरार पैदा कर देंगे, एक बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे, ये हाथ भी नहीं मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। खतरनाक मंसूबा था जिसके पीछे अमेरिका था, इसराइल था, उनके हवारी थे और पाकिस्तान के अंदर वतन दुश्मन कुव्वतें थी। अगरचे उन्होंने वतन दोस्ती का रूप धारा हुआ था, यह निफाक भी मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह वो यलगार आपने शहीद कायद से सीखा था कि कभी भी घबराना नहीं, हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। अगर आप साबित कदम रहे, अल्लाह आपकी मदद करेगा, मदद के मलाइका उतरेंगे, इमाम आपकी मदद करेंगे। लिहाजा उस तूफान का रुख मोड़ दिया आपने अरबईन के दिन। ये अरबईन उस खतरनाक फितने का दफन का दिन ठहरा, असर की यजीदियत की नाकामी का दिन ठहरा। आपने इस फितने को शिकस्त दी। शहीद कायद की निगाह में शिया सुन्नी वहदत एक बुनियादी उसूल है, उसूल है, कोई टैक्टिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, ये असल है असल। ہمارے تمام فقہا اور مراجع کے فتاوا بھی اسی اصل کے مطابق ہے، اسی اصل کے نتیجے میں ہیں۔ لہذا ان سب نے کہا ہے شیعہ سنی کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ہمارے فقہا نے فتویٰ دیا ہے شیعہ سنی کی تفریق یہ دشمن کی سازش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع کو کہا اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی توہین حرام ہے، حرام۔ دشمن یہی سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ شہید قائد کہا کرتے تھے عزاداری سید الشہداء ہماری شارگ حیات ہے، وہ اس شارگ حیات کو اس پر وار کرنا چاہتا ہے دشمن، ہماری عزاداری پر۔ اس کے فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ شیعہ سنی یونٹی کے ذریعے اور اسی طرح سے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھ کر، گناہ کبیرہ سمجھ کر سوشل میڈیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ پیج چلائے جا رہے ہیں، دشمن ممالک سے چلائے جاتے ہیں ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے۔ ابھی محرم نہیں آیا پھر وہی ایف آئی آر کا سلسلہ اور فتنوں کا سلسلہ شروع ہے۔ میں آج شہید قائد کی شہادت کے دن اپنے پورے پاکستان میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں بالخصوص اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر محرم سے پہلے وحدت کی فضا بنائیں۔ دشمن نفرت کی فضا اور تفرقے کی فضا بنانا چاہتا ہے، اسے شکست سے دوچار کریں۔ ایک تحریک چلائے ہمارے جوان، خبردار محرم سے پہلے وحدت کی فضا قائم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ شہید قائد وحدت کی بات بھی کرتے تھے اور عزاداری کے سب سے بڑے مدافع تھے پاکستان کی سرزمین پر۔ وہ فرماتے تھے ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن عزاداری سے تو شہدا نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے پنڈی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، عاشور کے دن یہاں پر کیا ڈھونگ رچایا گیا، کیا فتنہ کھڑا کیا گیا۔ بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور کی پریس کانفرنس بھی آپ نے سن لی کہ جو کچھ ہوا تھا ایک فتنہ تھا، اس میں کسی شیعہ کا عمل دخل نہیں تھا۔ دشمن اس قدر مکار ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی آپ نے گھروں سے باہر نکل کر اربعین سید الشہداء کے دن اس فتنے کو دفن کیا تھا، اس سال بھی اسی پنڈی کے اندر، اسی راجہ بازار کے اندر۔ دشمن چاہتا ہے تفرقہ پھیلے، محرم کو سیکیورٹی کا مسئلہ بنا دے، انتظامیہ پر دباؤ ہو، پولیس پر دباؤ ہو کہ یہ مجالس کیا مصیبت بن گئی ہمارے لیے، وہ یہ کہیں۔ دشمن ریاست کے لیے بوجھ بن جائے عزاداری سید الشہداء، دشمن یہ کوشش کر رہا ہے نامنی کی فضا اور تفرقے کی فضا بنا کر۔ لہذا جو بھی عزاداری سید الشہداء سے عشق رکھتا ہے عزاداری سید الشہداء کو مودت فی القربا کے فریضے کا مصداق سمجھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ہر قسم کی محرم اور اس کے دیگر ایام کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ بھی دیگر ایام اور مہینوں میں ہر قسم کی وہ کوشش جو وحدت کو، جو شیعہ سنی یونٹی کو نقصان پہنچائے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ بصیرت کی تحریک شروع کریں، آگہی کی اور شعور کی تحریک، شعور کی بیداری کی تحریک شروع کریں۔ یہ عزاداری سید الشہداء پر انڈائریکٹ حملہ ہے اپنے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات کی توہین کرنا۔ لہذا اس کا راستہ روکنا ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کی مجلس ہو، ایک جگہ ایک 10 مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک تھانے کے اندر 72 پولیس والے تقریباً یا 70 ہوتے ہیں، وہ کہاں کا سیکورٹی دیں گے؟ سمجھے دشمن کی سازش کو۔
आजादारी आपकी ताकत है, इबादत है। वो ऐसे एक मसला, सिक्योरिटी का मसला खड़ा करके इस पर वार करना चाहता है। वो पहले दहशतगर्दी के जरिए नहीं रोक सका, कत्लोगारतगरी के जरिए नहीं रोक सका, तकफीर के जरिए नहीं रोक सका, अब नया हरबा लेके आया है। अभी बाज पोस्टें इंडिया से चल रही हैं, अभी मुहर्रम शुरू नहीं हुआ, खतरनाक पोस्टें भी मैंने भी देखी हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यजीद के मुकाबले में उठने की सजा वो लिखता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, कोई और दे ना दे अल्लाह जरूर देगा। ये फितने खड़े कर रहे हैं वो, दुश्मन ने इसको फॉल्ट लाइन बना लिया है। आए शहीद कायद की रूह के साथ अहद करें, ए हमारे शहीद कायद, हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे लेकिन इस फितने को जरूर नाकाम करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे। जरूर पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नंबर एक, यहां पर बानियान मजालिस की भी जिम्मेदारी है, जाकरीन और वाइजीन की भी जिम्मेदारी है कि अपनी मजालिस को इस तरह से बनाए, चूंकि अहले बैत और मौला हुसैन की हर किसी को जरूरत है, जो आना चाहते वहां आए, वहां रुकावटें मौजूद ना हो। जिक्र हुसैन को आम करो। लिहाजा जाकरीन बानियान मजालिस, जाकरीन के साथ बैठे वो आज के साथ बैठे, बकायदा गुफ्तगू करें, जहां मजलिस पढ़ रहे हैं, यहां अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशय्यो भी हैं, सारे शरीक होते हैं, ऐसी गुफ्तगू करके जाओ कि हमारी यूनिटी और वादत में इजाफा हो, हम इकट्ठे हो जाएं, तकफीरियत के मुकाबले में, नासबियों के मुकाबले में, खारजियों के मुकाबले में। ये फरीदा और जिम्मेदारी है जो गैर जिम्मेदारी का सबूत देता है आज के दौर में, उसके पास कोई उज़्र नहीं है, कोई बहाना नहीं उसके पास। हम क्यों इतने सादा बने कि दुश्मनों में इस्तेमाल करें? शहीद कायद वहदत बैन अल मुस्लिमीन, आजादारी सईद शोदा के अजीम काज के परचमदार थे, अजीम मकसद के परचमदार थे। हम भी इस परचम को उठाए हुए हैं। आज आपने देखा कोरोना की वजह से मुल्की हालात आपके सामने हैं, वाकई आप बहादुर शुजा हैं, आप आशिक शहीद के, इन तमाम खतरात के बावजूद आप घरों से बाहर निकले, मेरी माए बहनें बेटियां बच्चे लेकर आई हैं, वाकई सलाम आपके शऊर और बसीरत और आगही पर, और सलाम आपका आप पर, आपके इश्क शहीद आरिफ हुसैनी पर। लिहाजा गुज़श्ता 10-12 साल का सफर ये वहदत का सफर है, ये आजादारी सईद शोदा के दिफा का सफर है, ये शहीद कायद का हदफ और मकसद था, जो इमाम खुमैनी कुद्दस सिरों ने कहा, जो राहबर ने कहा कि अर्ज करूंगा जाके। लिहाजा इस आने वाले मुहर्रम में खित्ते के हालात में आगे अर्ज करूंगा फिर दोबारा, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं, ये मुहर्रम हसास अय्याम में आ रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एक बड़े फितने को ईजाद कर चुका है, वहां दिन ब दिन दाखिली खाना जंगी की सूरत बन रही है, पूरी दुनिया से दहशतगर्द वहां लाए जा रहे हैं और आ रहे हैं वो। लिहाजा हमारे हमसाए में जब आग लगेगी, ये जो आग लगी है उसकी हरारत और तपश जरूर यहां पर आएगी। आजादारी सईद शोदा की हिफाजत सब पर बिलखसूस जवानों पर लाजिम है, अय्याम मुहर्रम आने वाले हैं, मजालिस की हिफाजत, जुलूसों की हिफाजत, आजादारी सईद शोदा के तमाम की तमाम इबादात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। छुट्टियां लेनी पड़े छुट्टियां लें, जवान अपने आप को हाजिर करें आजादारी सईद शोदा जो अय्याम माह मुहर्रम और सफर में होगी, ताकि हमारी पुलिस पर भी, रियासती जो सिक्योरिटी के इदारे उन पर भी बोझ कम आए, और आप अपना फरीजा अंजाम दो, ये हमारा फरीजा है, इबादत है। इसकी हिफाजत और सिक्योरिटी भी। बहरहाल ये मुहर्रम हसास अय्याम में आ रहा है। पिछले साल हमारे पाकिस्तान में इदारों के जो सिक्योरिटी अपना इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सबसे बड़े जो दो तीन एजेंसी थे उनके बड़े हेड जो हैं उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने 100 मिलियन डॉलर मुहर्रम में फिरका वारियत और फितना पैदा करने के लिए फंडिंग की है। 100 मिलियन डॉलर, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, 100 मिलियन डॉलर। अभी और करेगा, और ज्यादा करेगा, और मक्कारी और चलाकी के साथ अमेरिका आएगा। अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है, जो शैतान का दोस्त है वो भी शैतान है, जो शैतान का साथी है वो भी शैतान है, जो शैतान का एलाई है इत्तेहादी है वो भी शैतान है। वो इस जमाने का फिरौन है, इबलीस है, वो फितना खड़ा कर रहा है इस इलाके के अंदर। रीबर्थ ऑफ मिडल ईस्ट अब अफगानिस्तान से शुरू हो रही है, जो वेस्टर्न एशिया में शिकस्त खा गई थी, जिसे वहां शिकस्त हुई, उनके कई हजार अरब डॉलर बर्बाद हुए, उनके तमाम फितने नाकाम हुए। क्यों? इसलिए कि वहां पर वली फकी की क्यादत में इन फितनों का मुकाबला किया गया। मैं आगे चल के अर्ज करूंगा। बहरहाल ये मुहर्रम बड़ा अहम है, दुश्मन कमीन में है। खुदा के लिए अपने उलमा की बात मानो। हर वो अमल बजायर नेक ही क्यों ना हो जो फितने और फसाद का कत्ल गलतगरी का सबब बने, वो हराम है, हराम। लिहाजा शहीद कायद आजादारी सैयदुश्शोहदा वहदत बैनुल मुस्लिमीन के इस धरती पर सबसे बड़े दाई थे। आज मैंने पहले कहा, अगर आजादारी सैयदुश्शोहदा का दिफा हो, साथ देना हो, तो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के आप जितने भी दोस्त हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं और दुनिया में मौजूद हैं, आजादारी के तहफ्फुज़ और दिफा के लिए सबसे आगे होते हैं। इसका सबसे बड़ा गवाह रावलपिंडी के आशूर के वाकया के बाद आप थे, जिन्होंने बंद आजादारी, जो लोग आजादारी नहीं कर रहे थे, जाके अपने मजालस की और मातमदारी की और सीनाजनी की, आपने उस फितने को नाकाम किया। आपने उसके अगले जुमे को इश्क हुसैन का जुमा कहकर उस फितने को शिकस्त से दुचार किया, जो हमारी इमाम बारगो और मसाजिद पर हमले के लिए अगले जुमे को आ रहा था। आपने गफलत में नहीं रहना, बेदार रहना है। दुश्मन बेदार है, दुश्मन होशियार है, दुश्मन कमीन में है, दुश्मन मक्कार है, धोखेबाज है, फरेबकार है, दुश्मन बेदीन है, दुश्मन दरिंदा और भेड़िया है, दुश्मन इंसानियत का दुश्मन है, वतन का दुश्मन, दीन का, कुरान का, इस्लाम का दुश्मन। आपने बेदार रहना है।